بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ویک وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ فیتھ جو ہے وہ ہماری کنسٹرکشن آف ریالٹی ہے. ہم ادھر سے ہی بات کو شروع کر رہے ہیں. جی, میں نے اس میں پچھلے ہفتے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میں سے جو بھی اس پر غور کرنا چاہے, اس پر تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہے, تو اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے کہ واٹ از یور پرسنل کنسٹرکشن آف ریالٹی. اگر کوئی شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم جی, ادروائز وی کین موو فارورڈ. ہم اس سیشن کے بارے میں یہ اطمینان رکھیں کہ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے کہ لازماً اتنا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے, اور یہ دس از جنرلی واٹ آئی ڈو, کہ ہمارا ٹارگیٹ, میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ لرننگ ہوتا ہے, نہ کہ کورس کی کمپلیشن. تو اس لیے آپ نے اس پر اگر کچھ ٹائم چاہیے آپ کو, آپ دیکھیں, اف یو وڈ لائک ٹو شیئر یو موسٹ ویلکم. اس پر کوئی کوشچنز ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کریں اس کو بنانے میں. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دین وی کین موو فارورڈ.
السلام علیکم موئی صاحب, کین یو ہیئر می؟
آئی کین ہیئر یو, تھینک یو.
وعلیکم السلام. آئی ایم ناٹ ویری شیور, جب آپ کہہ رہے ہیں شیئر کرنے کو, میں نے اس کے بارے میں کافی سوچا ہے, سو از اٹ اوکے اف آئی کین گیو یو مائی اون کنسٹرکشن آف مائی ریالٹی ود فیتھ گیون گاڈز ایٹریبیوٹس, از دیٹ وڈ بی اوکے؟ اور
جی جی, دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. یہی ہے جو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
سو مائی ایکسپیرینس از دیٹ آئی ہیڈ اے ویری بیڈ لیگ انجری کازڈ بائی سم بڈی. ناؤ دس واز ابویسلی ود گاڈز پرمیشن دیٹ دس پرسن انجرڈ می, اینڈ دین دا سرجن ہو ٹریٹڈ می روئنڈ مائی سرجری بیکاز آف ہز انکمپیٹنس اینڈ نیگلیکٹ. And I got a serious bone infection resulting in multiple surgeries and years of agony. Again, it happened with God's permission. He could have made the surgery successful. My paradox with my faith in God and his attributes is, why did he allow the person to injure me, and why did he allow the surgeon to ruin my leg? God could have prevented both things. So this is, how do I understand his hikmat and mercy and justice? And also, what happens to the assailant and what happens to the doctor? What about their asmaish, since I couldn't do anything to the two of them?
Right.
This is one, and there's another one after this, if you allow me.
You are actually not sharing your construction, you are actually telling me that these are the paradoxes in your construction. ye paradoxes hi remove karne hai ji aapko. asal mein ye dekhna hai ki ye kis tarah se, jo situation jis tarah se aap dekh rahi hain, could it be any other way to look at it? ye jo aapne abhi sari abhi explain kiya hai, isme this is how things happened, how things transpired. It was very painful, agonizing for you, understood. And totally appreciated. I think anybody would have been agonized because in such instances. Jo sawal hai wo ye ki jab aap isko faith ki roshni mein construct karte hain is puri situation ko, to asal mein ye jo is waqt sawalat hain inke jawab dhoondte hain aap. Ye mere jawab kya honge isse koi khaas farak nahi padta, wo یہ میرا فیتھ ہے جس کی روشنی میں جواب دوں گا. اصل میں آپ نے ان جوابوں کو جب اپنی ذہن میں تلاش کرنا ہے, کیپنگ دا یو نو دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ, اف یو بلیو ان دوز ایٹریبیوٹس آف گاڈ, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. کیونکہ جب تک ہم اپنی زندگی کی کنسٹرکشن ان ایٹریبیوٹس کی روشنی میں کر نہیں رہے, تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی بلیو دیٹ گاڈ از مرسیفل, تو آئی ایکچولی ڈونٹ, because I'm not constructing that in the light of his mercy. Am I get are you getting my point? मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूँ, यानी मैं आपको अगर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ये तो असल में हर आदमी जो इस वक्त रिलीजन पे बात करता है वो ये देता है। मैं असल में ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी कंस्ट्रक्शन आप तक पहुंच जाए, वो मैं एक जनरल फॉर्म में आपके साथ आज मेरा एजेंडा यही है कि मैं शेयर करूं। सवाल ये नहीं है उससे, असल में जब तक कि वो आपकी अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। आपके सामने दो चीजें हैं, एक आपकी इंफॉर्मेशन है अबाउट गॉड, एक आपकी जिंदगी के इवेंट्स हैं। इनको जिस वक्त आप, इन पैराडॉक्सेस को जिसको के जब तक आप रिजॉल्व नहीं करते, उस वक्त तक ये पैराडॉक्सेस रहते हैं, रहने चाहिए। The problem arises when we ignore them and we say कि ठीक है, खुदा merciful है, मतलब ठीक है। इसके नतीजे में वो एक passive किस्म का एक statement है जो मेरे दिमाग में रह जाती है, उसका मेरी जिंदगी से as such कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी मैं जिस वक्त कोई आदमी जो है वो ज्यादती कर देता है, तो उसमें खुदा की मर्सी अपने लिए नहीं ढूंढ रहा होता। जिस वक्त मेरे साथ कोई नुकसानदेह चीज हो जाती है, तो मैं उस वक्त खुदा की हिकमत को नहीं तलाश कर रहा होता, इसलिए क्योंकि वो एक पैसिव चीज है। इसको एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि मैं और आप इस पर काम करें। ये है जी जो जो जिस वजह से मैं ये चाहूंगा कि बजाय इसके कि आप मुझे ये शेयर करें कि ये पैराडॉक्सेस है, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं और आप एक ही तरह से रिजॉल्व करें। असल मसला ये है कि रेजोल्यूशन जब आपके जहन में ऐसा हो जाएगा और आप इसको चाहेंगे कि रिजॉल्व हो, तो उसके नतीजे में वो आइंदा उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी आती रहेंगी, उसमें चेंजेस भी आएंगी। कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ होता भी रहेगा। मैं आज आपके सामने जो शेयर करूंगा, इसका मकसद ये नहीं है कि आप मेरी इस कंस्ट्रक्शन को इख्तियार कर लें आप सारे। वो जब तक आपकी अपनी जाती कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, आप इख्तियार कर नहीं सकते। ये महज एक कोई टेस्ट नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि मैंने इस पर सवालात पूछने हैं और उसके बाद आप पास हो जाएंगे। नॉट लाइक दैट। इट इज अबाउट गिविंग यू एन आइडिया दैट हाउ आई हैव कंस्ट्रक्टेड द होल थिंग। यू माइट डिसएग्री विद दैट, यू मोस्ट वेलकम टू शेयर योर डिसएग्रीमेंट्स। उसको क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें, हो सकता है इसके नतीजे में मुझे उसमें खला नजर आ जाए और मैं उसको बेहतर कर सकूं। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो जब तक हो नहीं रही, मेरी जिंदगी के इवेंट्स उसके अंदर बैठ नहीं रहे, उस वक्त तक कभी गौर कीजिए ना कि फिर उसके बाद क्या फायदा है खुदा की मर्सी का, अगर वो मेरे साथ मुतल्लक नहीं हो रही। मैं क्यों मान रहा हूं कि खुदा जस्ट है? मैं क्यों ये कहूं कि खुदा जानता है सब कुछ या वो ओमनिपोटेंट है? इसलिए कि ये एक किताब जो क्लेम कर रही है अल्लाह ताला की किताब होने का, वो कह रही है जिसके बारे में मैं असल में कन्विंस्ड भी नहीं हूं। ये है जो प्रॉब्लम हो रही है। यानी कन्विंस्ड क्यों नहीं हूं, इसीलिए क्योंकि जिंदगी में मुझे दिख ही नहीं रहा ये सब कुछ हो रहा है। ये प्रॉब्लम है।
मैं एक और इंसिडेंट बता दूं, मेरे में मेरा ख्याल है कंफ्यूजन है। दूसरा इंसिडेंट जो रिसेंटली हैपेंड हुआ है कि द डॉटर ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड अ हॉरिबल मैरिज एंड डिवोर्स एंड शी रिसेंटली जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग कमिटेड सुसाइड। नाउ आई नो सुसाइड इज हराम। द पैराडॉक्स अगेन विद माय फेथ इन गॉड्स एट्रीब्यूट्स इज व्हाई डिड गॉड लेट इट हैपन, बिकॉज आई वेंट टू द फ्यूनरल एंड द एगनी ऑन द पेरेंट्स फेसेस वॉज हार्टब्रेकिंग। अगेन दिस बिकेम अ पैराडॉक्स। हाउ डू आई रिजॉल्व these two tragedies keeping in view God's attributes? I do have faith, but is my faith weak? Is my I'm really confused myself.
मैं असल में जो चीज अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि इसमें आपकी गलती नहीं है जी। It is not about you. It is not about that lady who committed suicide. Actually, if you do not construct your the events in your life with the faith intact, जो अभी हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में खुदा को एक एक्टिव कंट्रोलर, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट माना जाए, जब वो आप मानते हैं तो किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? अगर ये नहीं होगा तो असल में जिंदगी में बाद इंस्टेंट्स वो होंगे जिधर आप कंप्लीट होपलेसनेस का शिकार हो जाएंगे। यानी देर इज नो रीजन टू हैव होप, इसलिए क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है उसमें मुझे खुदा की मर्सी दिख ही नहीं रही। तो मैं एक ऐसे बिलीफ के बारे में कि खुदा आइंदा कुछ करेगा, उसके बारे में मैं अपना सब कुछ वेजर कर रहा हूं या कर रही हूं, ये एक कंप्लीट होपलेसनेस का शिकार कर देती है चीज। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि फेथ की जिंदगी सिर्फ महज ये नहीं होती। आप जब ये फरमाती हैं कि इज इट अ वीकनेस ऑफ माय फेथ, आई एम नॉट जज ऑफ दैट, इट इज प्रोबेबली आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट फेथ मस्ट हैव अ 24/7 इम्पैक्ट ऑन आवर एक्शंस, ऑन आवर थॉट प्रोसेसेस, on our understandings, on our constructions of events around us and within us. अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके नतीजे में वो faith में weakness कहें उसको, faith की segregation with life कहें, ये एक चीज है जिसको हम faith कहते हैं और एक है हमारी जिंदगी के मसाइल। ये जब हम लोगों से बात करते हैं कि हमें हर हाल में ठीक रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, तो आपने कई दफा ये फ्रेज सुना होगा, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, यू नो, ये तो बड़ी नॉन प्रैग्मेटिक किस्म की बात कर रहे हो तुम। तो ये जो हम ये जब सारा कुछ कर रहे हैं तो कह क्या रहे हैं असल में, वो ये कह रहे हैं कि तुम किस किन रियलिटीज में अपने आप को फंसाए हुए हो। लेट्स बी रियल, ये जिंदगी ये है, मतलब दिस इज ऑल इट दैट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड इट मेक्स नो सेंस। सब कुछ रैंडम हो रहा है, होता रहेगा, यानी तुम्हें कल को कोई चीज दुख पहुंचा देगी, कल को कोई चीज नुकसान पहुंचा देगी, ये सब कुछ होते रहना है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये असल में फेथलेस कंस्ट्रक्शन है, फेथ की वीकनेस नहीं है इसमें, फेथ की सेग्रीगेशन हो गई है। सेग्रीगेशन हो गई है का मतलब है कि ये मेरा फेथ, मिसाल के तौर पर मुझे 5 वक्त की, कभी कभी 5 नहीं 4 कभी 3 वक्त की नमाज पढ़वा देता है, तो ये है जो मेरा फेथ है। नहीं, वो मेरा फेथ जिंदगी में किधर है? What would have happened to my yesterday? मैं अगर अपनी जिंदगी पर गौर करूं और देखूं कि कल का दिन जो मैंने गुजारा है, वो जो चीजें मैंने सोची हैं, जो मेरे जहन में आई हैं, जिस तरह से मैं जिंदगी को देख रहा था, मैंने जिधर जिधर इरिटेशन का मैं शिकार हुआ, जिधर जिधर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ, उन फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, गुस्से की इंस्टेंसेस में, किधर था मेरा फेथ? क्या था? और अगर होता तो क्या होता? जब मैं इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने लग पड़ता हूं चीजों को, तो असल में वो फेथ मेरी जिंदगी से रिलेट करता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं जी, मैं देखिए, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन हर माइंड, द लेडी हु कमिटेड सुसाइड, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट आई डू नो दैट दिस इज समथिंग दैट ओनली पीपल विद कंप्लीट डेस्परेशन, इन कंप्लीट होपलेसनेस वुड डू। Those who would think that, you know, there is no chance of things getting better. जब ये situation हो जाए तो फिर असल में आप खुदा के इल्म, हिकमत, बरसी, ये सब कुछ खत्म हो चुकी हुई है। और यही कैफियत अगर मेरी टांग पे चोट लगने में हो गई है, तो उस वक्त असल में वो एक फेथलेस कैफियत हो गई हुई है, फेथलेस कैफियत हो गई है जिंदगी में। हम पढ़ तो रहे हैं, सूरह यासीन भी पढ़ रहे होंगे, और यू नो, हो सकता है कि वो आयतें भी विर्द कर रहे होंगे, ये मानते हुए कि ये अल्लाह की किताब है, लेकिन वो मानना हमारे यहाँ असल में एक प्रॉब्लम हो गई है। हमें बचपन से जिस चीज की कंडीशनिंग की गई है वो ये कि ये बस मानना है, यानी हमने बच्चों को इस चीज में नहीं डाला कि वो इस फेथ को डेवलप कैसे करना है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, एक पेरेंट को भी नहीं पता, एक टीचर को भी नहीं पता, वो किस तरह उस प्रोसेस में डालेगा उसको। वो तो ये जानता है कि बच्चे को ये कहना चाहिए जब उससे इम्तिहान में पूछा जाए कि कितने अल्लाह ताला हैं, कितने खुदा हैं हमारे, या कितने हमारे परवरदिगार हैं, तो कि एक, और वो किस तरह से रिलेट, वो कि उसकी क्या सिफात हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से सिफात बयान कर दे, असमाउल हुस्ना की जो पोएम है वो याद ही कर दे, यू नो, ये सब कुछ वो कर दे, बस ये काफी है, दिस इज व्हाट इट इज। अगर कोई फौत हो जाए तो कुरान खानी कर दे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो अल्लाह के पास चला गया और अब उसको इस तरह की चीजों की जरूरत होगी। यानी देखिए क्या हो रहा है, हमने अपनी जिंदगी को सेग्रीगेशन का शिकार किया हुआ है। जब तक कि मेरी जिंदगी में ये एक्टिवेट नहीं होगा, और ये एक्टिवेट एक दिन में नहीं होगा, ये है जो चीज समझने की है।
वही सब, आप किस तरह ये एक्टिवेट होगा ये आप सिखा सकते हैं, बिकॉज आई हैव फेथ, बट यू नो, मैं ये जो बातें हुई हैं इनसे जरा काफी अपसेट भी हो गई पेरेंट्स के लिए, तो ये एक्टिवेट करना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना फेथ में कि अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने कराया, तो दिस इफ समहाउ यू कुड हेल्प मी एंड इट विल हेल्प द अदर्स आल्सो।
मैं असल में इससे आगे की बात कर रहा हूँ, मैं इससे भी आगे की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये महसूस करने लग पड़े और इसको याद रखने लग पड़े कि ये खुदा की तरफ से आई है मेरे ऊपर आजमाइश, तो फिर इस बात पर इत्मीनान पैदा होना चाहिए, नोइंग गॉड्स एट्रीब्यूट्स, इत्मीनान पैदा होना चाहिए कि इसमें फिर मेरे लिए कुछ अच्छा है, इसमें कुछ मेरे लिए अच्छा है, जो नुकसान, जिस तकलीफ, जिस पेन से मैं गुजर रहा हूं, इससे गुजरने में मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। ये जो एस्पेक्ट है, ये आप कहते हैं किस तरह पैदा किया जाए, आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है इस चीज को पैदा करने का, जो अभी आपने इंस्टेंसेस अपनी जिंदगी के बताए कि आप उसको अपनी, ये कोई जरूरी, देखिए व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये कोई जरूरी नहीं कि आप सही एक्यूरेट किस्म की कंस्ट्रक्शन करें, हमारी कंस्ट्रक्शन आमतौर पर एक्यूरेट नहीं होती है, ये जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा ये भी एक कंस्ट्रक्शन है, इसलिए उसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, वरना तो उसको रियलिटी कहेंगे, ठीक है जी, कि ये है रियलिटी, मैं उसको कहता हूँ माई कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी, मैं किस तरह से देख रहा हूँ इस रियालिटी को जो मेरे साथ हो रही है, मैं उसको किस तरह प्लेस कर रहा हूँ चीजों को, किस तरह से जगह जगह पे रख रहा हूँ, ये जब मैं करता हूँ उससे असल में फेथ, मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि ये पैराडॉक्सेस की रेजोल्यूशन में फेथ एलिवेट होता है।
ठीक है जी, थैंक यू जी
ये मोस्ट वेलकम जी।
जी आसिफ साहब, आप अपना कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? एक बात मैं कहना चाह रही हूँ तमाम मेहमान से, ये जब गुफ्तगू हो रही होती है आप अपने आप को अनम्यूट मत किया कीजिए, जब आपको आपका नाम दिया जाए तो तभी आपने जो शेयर करना है या सवाल पूछना है आप तभी खुद को अनम्यूट करेंगे प्लीज। आसिफ साहब आप अपना बात करेंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, आई डोंट नो ये फोरम किस हद तक हमें इजाजत देता है कि हम अपनी पर्सनल चीजों को यहाँ पे शेयर कर लें, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें जरूर शेयर कर सकता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल ग्रुप। आई मीन मेरा जो लाइफ पाकिस्तान में और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें जो मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ कि जी के, और उस वक्त जब जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो स्किन डिजीज जिसको कहते हैं, और वो बेसिकली ऐसी स्किन डिजीज थी कि जिसको हम कह सकते हैं कि बर्स जो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, जो बर्स थी वो पहले थोड़ी थोड़ी होना शुरू हुई और उसके बाद जो है वो ज्यादा हुई और पूरे जिस्म पर हो गई। अब पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में तो आपको पता है कि बीमारी भी एक वो बन जाती है कि जी के ये तो आदमी जो है वो नॉर्मल नहीं है या कुछ ऐसे है। तो मैं जब उस वक्त था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि ये जो बीमारी है ये ऐसे क्यों है, ये मेरे मुंह पर नहीं होनी चाहिए, इससे जो है ना वो लोग अजीब तरह से इसको ख्याल करेंगे, और इंतहा की दुआएं भी मांगा करता था, 5 वक्त मस्जिद में जाना और दुआएं मांगना कि ये मुंह पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इवेंचुअली मुंह पर हो गई, बल्कि वो सिर्फ मुंह पे ही नहीं पूरे जिस्म पर हो गई। तो उससे जो है ना वो डेफिनेटली जब भी कोई देखे तो पाकिस्तान में पूछे कि यार ये आपको क्या है या ये है, और मेरी इवन वालदा भी इसमें बहुत परेशान रहती थी। फिर उन्होंने एक बार ख्वाब भी देखा कि जी के ये बीमारी, वो एक अलग डिस्कशन है कि उन्होंने ख्वाब में क्या देखा, और वो फिर इवेंचुअली उन्होंने बाद में मुझे बताया, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई इन एनी केस। लेकिन उसके बावजूद जो एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो उस वक्त मैं सोचता था और अब भी इवन सोचता हूं, कि वो बीमारी तो ठीक थी लेकिन वो बीमारी अल्लाह ने कभी मेरी जिंदगी में कोई चीजें जो मैं अचीव करना चाहता था उसमें कभी ऐसी रुकावट अल्लाह ने नहीं डाली। यानी यूं समझ लें कि एक अज्म की जो सलाहियत थी मेरे अंदर वो ऐसी पैदा हुई उसके मुकाबले में कि उस अज्म के जरिए मैंने बहुत सारी और अच्छी चीजें अचीव की लाइफ में, और यूं समझ लें कि उसको कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं कोई फील कर रहा हूं कि जी कि ये हर्डल है मेरी 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 लाइफ में, हालांकि जाहिर सी बात है आपको पता है पाकिस्तान की सोसाइटी में ताने ताना जनी और ये है और ये बीमार है और ये ऐसी चीजें जरूर
बिल्कुल
वो आपको हर वक्त सहनी पड़ती है। बल्कि अभी भी जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग मतलब बेख्तियार बाज़ुकात पूछ लेते हैं, अच्छा ये आपके सारे जिस्म पर है, अच्छा ये कैसे हुई, आप ये है वो है। तो मतलब कहने का ये है कि उसके मुकाबले में जो अजमत अपने अंदर पैदा हुआ अपनी पर्सनैलिटी में, मैं ये समझता हूँ कि ये भी अल्लाह की तरफ से एक समझ लें कि गिफ्ट है, कि एक तो वो उसने ले लिया लेकिन दूसरा एक गिफ्ट उसके मुकाबले में दे दिया। और फिर जो अचीवमेंट्स की अगर मैं लिस्ट बनाऊं जो उसके बावजूद मुझे हासिल हुई, तो डेफिनेटली ये एक यूं समझ लें कि ये सिर्फ मतलब इसमें मेरी मेहनत, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ही कामयाबी मिल जाए, लेकिन उसमें अल्लाह ने डेफिनेटली एक सक्सेस का फैक्टर करके और मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं मतलब इसके बावजूद भी अपने आप को जो है ना एक नाकाम इंसान नहीं समझता इस बीमारी के बावजूद। एक चीज तो ये थी। अच्छा दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपसे वाबस्ता रिश्तों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिकली उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आती हैं। और ये जो बेसिकली प्रॉब्लम्स थी वो जाहिर है मेरी जिंदगी में भी हुई रही, लेकिन उनको मतलब डिस्कस किए बगैर मैं जरूर ये कहूंगा कि जैसे वो एक वो थोड़ा सा वो एक डायलॉग की तरह ही हो जाएगा कि जैसे हमेशा फेथ ये मेरी होती थी कि जैसे कोई अच्छा वक्त मुस्तकिल नहीं होता तो बुरा वक्त भी मुस्तकिल नहीं होता। तो मतलब कहने का ये है कि बुरा वक्त था लेकिन जब मुड़ के देखता हूं तो उस बुरे वक्त से फिर निकल भी आए, और अच्छा वक्त था फिर अच्छा वक्त खत्म भी हो गया। लेकिन दोनों केसेस में ये फेथ स्ट्रांग रही कि ये अगर आज बुरा वक्त है माली तौर पर बीमारी या किसी की मौत रिश्ते में या कोई और परेशानी, तो ये बुरा वक्त भी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज थी ये यानी यूं समझ लें कि एक तो अज्म या जिसको डिटर्मिनेशन कहते हैं, और दूसरा ये कि नथिंग इज परमानेंट, यानी हमारी लाइफ ही परमानेंट नहीं है, मतलब इसके लिए तो रिलीजियस होना भी जरूरी नहीं है। तो ये जो दो चीजें थी ये मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी यानी रियलिटी जो है ये मेरी उस मैं उसको देखता हूँ इस तरह के जो रियलिटी जो कंस्ट्रक्ट की मैंने ये मैं अभी नहीं जब उस वक्त था उस लम्हा मौजूद में तो उस लम्हा मौजूद में अभी भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि आई एम ऑन द बेड ऑफ रोजेस, लेकिन ये कि अभी भी यही जो है वो एक सीख ली है चीज कि जब आई एम इन द 40s बाय द वे, तो वो सीख लिया चीज कि जी के जब भी कोई चीज ऐसे होगी तो वो अगर मुश्किल होगी तो उस मुश्किल को अपनी डिटर्मिनेशन से ओवरकम करने के लिए, जो डिटर्मिनेशन कैसे आपकी हिम्मत अंदर आपकी पैदा होती है, मेहनत की सलाहियत, ये सब सलाहियत जाहिर है ये अल्लाह की तरफ से हैं, और अगर मुश्किल आती है तो वो भी डिटर्मिनेशन से ही ओवरकम की जाएगी, अगर आसानी आती है तो वो भी डिटर्मिनेशन से ही अचीव की जाएगी,
जो उसने आपको ये मौका दिया कि आप अपने अंदर अज़्म जैसी चीज पैदा कर सकें, ये उसकी इनायत समझते हुए कि अगर ये सिचुएशन ये मुश्किल जो है जो आई इसने आपको ये दिया है और आपके ख्याल में इट इज वर्थ इट, तो असल में दिस इज वॉट what happens, I mean this is what will not let you be hopeless ever, ठीक है जी। Desperation basically इधर से शुरू होती है कि ये अभी ये हुआ है कल भी ऐसे हो। आपने कई दफा लोगों को सुना होगा और यार मेरा काम नहीं चलना, ठीक है ना जी, मेरा जो मामला है ना वो तो असल में खास, मैं जिस चीज में हाथ डाल दूं उसमें तो खराब ही होना, ये जब वो कर रहे होते हैं तो असल में ये हो सकता है मजाक से भी कर रहे हो, लेकिन ये चीज जो आपके अंदर असर डाल रही होती है उसका अक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट कई दफा ये होता है कि यू कंप्लीटली लूज होप इन लाइफ. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको मजीद अच्छी क्वालिटीज से सरफराज करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबको.
शुक्रिया.
हाँ जी, मेरी सर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है वो मतलब ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, मुश्किलें तो सबके ऊपर आती हैं. सो मेरे ऊपर जो मुश्किल आई थी या है वो एक मुझे एक बीमारी है और उसमें इवेंचुअली उसका प्रोग्नोसिस ये है कि आई माइट एंड अप ऑन अ व्हीलचेयर और मे बी नेक डाउन, यू नो, बिल्कुल काम चाम नहीं होगा, करूंगी कर सकूंगी मैं या व्हाटएवर. उसके अलावा माय डॉटर आल्सो हैज एन इनक्योरेबल डिजीज, बट मुझे बस मतलब अल्लाह मियां से मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां चलता फिरता रखें और चलता फिरता उठा लें और प्रेफरेबली 60-65 के बीच में फारिग कर देना मुझे. और एज फार एज द होल सिचुएशन इज कंसर्न, मुझे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया मेरे दिमाग में कि वाई मी, बिकॉज लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, तो लोगों के साथ होता है तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ भी होगा. एंड आई एम होपिंग, बिकॉज ये मैंने खुद तो किया नहीं है, कि आई विल बी कॉम्पनसेटेड एंड इट विल बी टोटली वर्थ इट. और दुनिया में मेरा एटीट्यूड है कि जिसको कहते हैं ना शिट हैपन्स, तो वो ठीक है, हो गया तो हो गया, बस अल्लाह मियाँ इसको इसकी वर्स्ट कंडीशन तक ना लेके जाए, इसको मैनेजेबल रखे और आगे फिर पार्टी पार्टी.
अल्लाह करम करे जी इंशाल्लाह. और इसमें बस इतनी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी, दैट इट इज नॉट द सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइव्स व्हिच विल एलिवेट अस, इसको ज़हन में रखना है हमें. इट इज द रिस्पॉन्स दैट वी गिव टू दोज सर्कमस्टांसेस व्हिच विल एलिवेट अस. और आपने जिस तरह से माशाल्लाह ये बात सारी फरमाई है, वो ये सर्कमस्टांसेस तो देखिए यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मालूम नहीं है कि ये कल भी ठीक चलना है, ये आंखें कल भी देखेंगी, ये जुबान कल भी बोलेगी, ये कान कल भी सुनेंगे. देयर इज नो गारंटी. ठीक है जी, देयर इज ओनली वन सर्टेनिटी इन लाइफ एंड दैट इज दैट इट इज गोइंग टू एंड. जिस तरह अभी आसिफ साहब ने फरमाया दैट इट इज गोइंग टू पास. तो जब ये सिचुएशन है और आपका ये रवैया ये है जो आपका रिस्पॉन्स है, एंड दिस इज इंशाल्लाह व्हाट इज गोइंग टू एलिवेट यू. इसमें जो कई मरतबा लोगों की तरफ से जो ये बात आ जाती है कि वो इतनी मुश्किल में पड़ा है कि उसकी आसानियां अल्लाह ताला उसको अंदर दे देगा, नहीं, अल्लाह ताला ने जो किया उस पर उसको कोई आसानी नहीं मिलेगी. असल में वो एक आजमाइश थी, अब उसका रिस्पॉन्स है जो उसके लिए आसानियों का बायस बनेगा. अगर वो सारी जिंदगी वावेला ही करता रहा है कि मैं ऐ भी गया तो ऐ भी खराब, वो भी ठीक नहीं, ऐ भी ठीक नहीं, तो असल में ये उसकी उसकी जो बेंट है पर्सनैलिटी की वो अनग्रेटफुलनेस की तरफ जाएगी. आपने जिस तरह बात फरमाई है इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अल्लाह ताला आपकी आपकी बेटी को भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, उसको किसी बहुत मुश्किल में ना डाले, आपको भी ना डाले, और आपको और उनको भी वो ईमान नसीब फरमाए कि जिसमें हमेशा नज़र जो है वो उसी तरफ हो जिस तरफ आपने फरमाया है कि इंशाल्लाह इसके बाद तो पार्टी पार्टी है. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू जी. थैंक यू.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी.
जी ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ अटलांटा से.
जी जी ज़ैन सर,
आप ही की बात को थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ लोगों से मोटिवेशन के लिए कि द रिस्पॉन्स वी गिव टू द सर्कमस्टेंसेस व्हिच विल एलिवेट अस, दैट्स द कैच सेंटेंस. मेरी उम्र कोई 60 इयर्स है और मैं यहाँ अमेरिका में मुकीम हूँ 35-40 साल से तकरीबन, और बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया. और जब एक स्टेज पे पहुंचा जहां मैं अपने आप को फाइनेंशियली कामयाब समझा और रिटायर होना चाहता था, उस वक्त टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस वक्त मुझे डायग्नोस हुआ कि आई बिकेम डायबिटिक. और मैं समझ रहा था कि वहां से अब मैं एंजॉय करूंगा लाइफ को, लेकिन वहां एक बिजली की डायबिटिक जो होती है, इट्स अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस बेसिकली, और उसी से आप फिर जूझते रहते हैं और वो कोई अनमैनेजेबल हो जाती है, जबकि है नहीं ऐसा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों. तो वहां तो एक बिजली की तरह गिरी, और जो साहब ने मुझे डायग्नोस किया वो मेरे अपने दोस्त थे, बहुत करीबी कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैं उनसे हर वक्त कंसल्ट किया करता था, हर साल प्रोएक्टिवली रिपोर्ट भी बनवाता था. लेकिन उन्होंने इससे पहले नहीं कहा, अचानक उन्होंने कहा. तो मैंने कहा अच्छा, मुझे कुछ नहीं मालूम मेडिकल फील्ड के बारे में, मुझे साइंसेस से दिलचस्पी भी नहीं थी, बिल्कुल कोई साइंसेस से कोई दिलचस्पी नहीं, जीरो. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ये बताइए, उन्होंने दवा प्रिस्क्राइब की, तो मैं दवा से इंस्टिंक्टिवली मैंने तरद्दुद किया, मैंने कहा नहीं दवा नहीं, मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मैं इसको इसको कुछ गिजा के जरिए से, कुछ एक्टिविटी के जरिए से ठीक कर सकूं. ये मेरे अपने इंस्टिंक्ट्स थे, वो मैंने जो पूछा मासूमियत से पूछा मैंने. तो उन्होंने वो उनके पास जवाब नहीं था क्योंकि मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में मुझे बहुत ही अब्रप्ट जवाब दिया, ये दवा खाना पड़ेगा आपको, बस ऐसे वैसे खाना. तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका सेंटेंस, एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा, हालांकि मेरे दोस्त थे. तो मैं बगैर कोई नॉलेज के मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने ये कहा, आपने मुझे 3 महीने की दवा दी ना, इंशाल्लाह मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं 3 महीने से पहले इस दवा से बाहर आकर दिखा दूंगा आपको. और मैं वल्ला कह रहा हूं, हलफ बा हलफ, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस वक्त, बस मेरे मुंह से ये बात निकली, बस शायद अल्लाह ने सुनी है, वल्लाह वाला. उस रात गया मैं, वहां से मैंने रिसर्च स्टार्ट की अपनी कि व्हाट इज डायबिटी, व्हाट इज डायबिटीज, ये क्यों होती है और इसके अंदर नहीं क्या करना चाहिए, नफी क्या है इसके अंदर, कि जो चीज ना करें हम, उसके बाद में इंक्लूजन्स है. तो सबसे पहले मैंने 2-4 चीजें पता चली, तो मैंने फौरन उसी रात से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया. और 1.5 माह में मैंने तकरीबन 10 से 15 पाउंड लूज किया वजन, और मुझे एक वन फाइन डे थोड़ा सा चक्कर आया मुझे, तो मैंने डॉक्टर साहब को फौरन फोन किया. तो उन्होंने कहा कि जो दवा मैंने आपको दी है उसको फौरन खत्म कर दीजिए, ये मैं आपको 45 डेज की बात कर रहा हूं. तो मैंने उनको उसी वक्त कहा, आपको याद है आप मुझे, मैंने आपसे कहा था कि 90 डेज के अंदर अंदर दवा से बाहर आऊंगा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं दवा ना खाऊंगी. उन्होंने कहा हाँ ना खाइए दवा आपकी. फिर उन्होंने मुझे कुछ तफसील पूछी. टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगेन, मैं सिर्फ खुद उससे बाहर नहीं आया हूं, मैं 10 साल अपनी एज में यंग हुआ हूं, और इस वक्त मैं न्यूट्रिशनिस्ट बना हूं उसके बाद बेहतरीन, और ऑनलाइन मैं 100 लोगों को ट्रीट करता हूं.
वाह वाह.
अगर अल्लाह ताला मुझे उस मुश्किल में नहीं डालते तो मैं आज जो कर रहा हूं नहीं कर सकता. कल की बात, मैं आपको एक कंसल्टेशन दिया हूं मैं इंडिया में, वहां एक वहां से कांटेक्ट किया मुझे, अक्सर लोग, मैं इंडिया पाकिस्तान ही को एड्रेस करता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है. तो वहां एक लड़का 17 साल का टाइप 1 डायबिटिक हुआ है, जो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है, कभी किडनीज आपके खराब होते हैं, कभी लंग होता है, कभी पैंक्रियास होता है. वो इतनी उम्मीद से मुझे कॉल किए हैं और मैं पूरी यानी एनकरेजमेंट के साथ उनको कहा, मैंने कहा उनसे कि आपको मैं ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दूंगा बच्चे को और आप लोगों को, कि आपकी सबकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और ये मैनेजेबल रहेगा, क्योंकि इंसुलिन वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. हम बाहर से कितना देना है हम बताएंगे, लेकिन गिजा के जरिए से उसको पहले से ज्यादा सेहतमंद बना देंगे हम उसको, लेकिन ये मैनेज करना पड़ेगा आपको. सो इट्स द सर्कमस्टेंसेस वी डील विथ विच विल मेक अस अ बेटर पर्सन. और बाकी तो इन्ना माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरा है. बस मैं मेरे जज्बात थे, आप लोगों से शेयर करना चाहता था.
थैंक यू वेरी मच जी, दैट वाज सो वेरी काइंड ऑफ यू. एंड असल में जो चीज मैं चाहूंगा, आप अगर बुरा ना मनाइए तो ये चैट पे अपना कॉन्टेक्ट वगैरह भी अगर दे दें, ताकि अगर कोई यहाँ से हमारे साथी आपसे रब्ता करना चाहें, कोई हेल्प लेना चाहें, तो दे वुड हैव द अपॉर्चुनिटी. रैन साहब जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका. व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर अगेन इज कि एक वाक्या हुआ है जिसके जिसके नतीजे में आदमी इस फिक्र में भी मुब्तला हो सकता है बड़े आराम से कि वाय मी, मेरे साथ क्यों किया है ये अल्लाह ताला ने। लेकिन एक आदमी बजाय ये देखने के कि ये मेरे साथ हुआ है, वो ये देखे कि मैंने इसको मोस्ट अप्रोप्रिएटली कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अगर ये मेरे साथ किया है खुदा ने तो ये फिर उसकी मर्सी का तकाजा है कि वो मेरे लिए बेहतरी चाहता है। जो जिस मुश्किल से मुझे वो गुजार रहा है उसके अंदर से आई विल कम आउट एज अ बेटर पर्सन, आई विल ब्रिंग अबाउट इट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट सम गुड इन मी, इट विल एक्चुअली एनहेंस सम ऑफ माई पोटेंशियल। ये जब आप इस तरफ से देखना शुरू करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स सिचुएशंस को डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा, और वो जो रिस्पॉन्स डिफरेंट होना शुरू होगा उसके नतीजे में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली तो मैं जानता नहीं क्या होती, मॉरली, एनी अदर पोटेंशियली वो बेहतर होना शुरू हो सकती है जी। एंड दिस इज वॉट आई वॉज सेइंग कि जिस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन जो हैं, अब ये देखिए दो लोगों के साथ एक ही वाक्या होता है और दोनों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, इसलिए नहीं डिफरेंट होता, यही मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब अब जब खास तौर पे पेरेंटिंग वगैरह के केसेस में ये पूछा जाता है कि हमें यहाँ पर सख्ती करनी चाहिए, तो मैं असल में ये कहता हूँ कि सख्ती से एक चीज तो डेफिनेटली हो जाएगी, वो जो अनवांटेड बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उनके बच्चा छोटा सा है क्या करे, मतलब आगे से आपने थप्पड़ मारा है वो तो थप्पड़ नहीं मार सकता, तो या ये कि वो आपको गिरा ले जी, ऐसा नहीं पॉसिबल। वट विल हैपन इज दैट द बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज, बट वट यू डू नॉट कंट्रोल इज गोइंग टू हैपन इज हाउ दैट चाइल्ड इज गोइंग टू परसीव दिस सख्ती। ये जो स्ट्रिक्टनेस है उसको जैसे वो परसीव करेगा, जैसे उसको कंस्ट्रक्ट करेगा जेन में, एक बच्चे ने किया मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन उसकी ये है कि मैंने गलती की थी, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे आइंदा गलती नहीं करनी चाहिए या मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए। एक आदमी ने ये कहा कि मैंने इस बुराई को करने में जो बेएहतियाती की थी कि मैंने अपने वालिद साहब के सामने उनको पता चलने दिया, मुझे आइंदा इसको पता नहीं चलने देना चाहिए। इन दोनों कंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर जो है, रिस्पॉन्स जो है आइंदा का, वो बिल्कुल डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई रास्ता नहीं है ये जानने का कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है। तो उस पोटेंशियली नेगेटिव कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हमको ये काम करना चाहिए, इस सबर को अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि हमने बच्चों के साथ जो ताल्लुक पैदा करना है उसके नतीजे में वो इस बिहेवियर के पीछे जो प्रोसेसेस हैं उनको आउटग्रो करें। ठीक है जी, इट इज गोइंग टू टेक टाइम फॉर श्योर, लेकिन अगर वो हो जाएगा तो असल में बच्चे के ये ना सिर्फ बिहेवियर खत्म होगा, उसके अंदर एक मेंटल मेच्योरिटी भी आनी शुरू हो जाएगी, वो मेंटल ग्रोथ का बायस बनेगा। लाइकवाइज ये जो मेरी और आपकी कंस्ट्रक्शन है, हम जिंदगी को किस तरह से देख रहे हैं, हमारे साथ होने वाले वाकयात दो लोगों के साथ एक ही हैं, एक उस पर डिस्करेज हो जाता है, एक उस पर अपनी जिंदगी एक नई जिंदगी का आगाज कर देता है। दिस इज ऑल आवर रिस्पॉन्सेज, और इन रिस्पॉन्सेज में जैसा कि मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, मेरी कंस्ट्रक्शन रियलिटी की और मेरी जिंदगी के बारे में ये ख्याल जो है कि व्हाट इज अ सक्सेसफुल लाइफ इन माय व्यू, उसमें मैंने एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इंसान को रिस्पॉन्ड उसने कैसे करना है, इस मामले में अल्लाह ताला ने मुकम्मल आजादी दी हुई है, मुकम्मल आजादी दी हुई है, अनलेस कि वो अल्लाह के किसी कानून की जद में आ जाए फिर वो आजादी गड़बड़ करती है, अदरवाइज उसके पास 100% आजादी है कि वो किस तरह से किसी चीज को रिस्पॉन्ड करे। थैंक यू वेरी मच जी जैन साहब, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। और प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो इसको अपने कॉन्टेक्ट को शेयर कर दें ताकि यहाँ पर कुछ लोगों को अगर इससे फायदा हो सके तो वो इससे फायदा उठा सकें, आपसे रब्ता कर सकें इंशाल्लाह जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम
जी सर, कैसे हैं, क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र है, आप नहीं करीब से।
वैसे तो मैं बेचैन हूँ आपके फिर जानने के लिए, लेकिन मैं अपना भी शेयर करती हूँ।
जी
मैं बेचैन हूँ कि आपके जानूं।
जी जी वो आ जाएगा जी, वो कोई जल्दी नहीं है।
ठीक है, मैं अपना ये बताना चाहती हूँ कि मेरा फेथ रब की जात के साथ ये है कि मैंने कभी शिकवा नहीं किया
माशाल्लाह
किसी भी सिचुएशन। मेरा जो खुदा का तारुफ मुझे मिला है वो सिर्फ 3 साल पहले मिला, इससे पहले मैं आशना नहीं थी रब से, सीधी सी बात। मतलब رسول سے بہت تھی, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تھی. ان کے ساتھ جیسے محفلیں کرنا اور سب کچھ کرنا, اور بس لگتا تھا کہ وہی ہیں سب کچھ, انہی سے مدد مانگنی ہے, انہی کا سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی میں نے یہ چیز جو بہت شدت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خود پر محسوس کی ہے وہ یہ تھی کہ میری فطرت نہیں مری کبھی اس سچویشن میں بھی, وہ ہمیشہ سے زندہ تھی. جو بھی حالات آئے, میں بہت چھوٹی سی تھی, مطلب 6 سال کی جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, بس اس کے بعد بہت آزمائش والے تھے حالات, بہت زیادہ. شادی کے بعد ایون کے 10 سال بھی بہت زیادہ تھے آزمائش والے, بہت زیادہ. مطلب جیسے ایسے تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں, ہونا چاہیے جو اچھا, یہ لوگوں کی نظر. لیکن پتا نہیں کیوں مجھے ایک تسلی اور عجیب سا سرور رہتا تھا ہر سچویشن میں. کیوں وہ مجھے اس لیے فیل ہوتا ہے کیونکہ میں نے کبھی شکوا نہیں کیا کہ اے اللہ تم نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا, یہاں سے یہاں اٹھا کے کیوں کر دیا. یہ 3 سال پہلے بھی ایسا تھا, اب تو اور زیادہ پختگی آ گئی ہے. میں مطلب اگر میں کہتی ہوں کسی سے, اپنے بچوں کے لیے بھی کہہ دیتی ہوں نا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا کرے, میرا تعلق ختم نہیں ہوا تھا یہ بھی میں بتا دوں, دعا ختم نہیں ہوئی تھی یہ بھی بتا دوں, کوشش بھی نہیں ختم ہوئی تھی. ایک اور جو فیت بہت مضبوط ہے وہ یہ کہ میں نے جب عزم کر کے کوئی ارادہ کر کے کھڑی ہوئی ہوں نا, وہاں اللہ کا ساتھ ملا ہے مجھے ہر سچویشن میں. وہ بھی مطلب مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز میں اچیو کرنا چاہتی ہوں, تو اس میں میں نے کوشش کی ہے پورے دل سے, تو وہ بھی ملی. میرا اب تو ایسا تعلق ہو گیا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مطلب موت زیادہ یاد آتی ہے, ایسا تعلق اس سے ہو گیا ہوا. وہ جو بھی کرتا ہے میرے بچوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا میرے ساتھ ہوتا ہے, میری بیٹی کو بھی پینکریاز گیا اسی طرح, اس کو بھی میں بہت سمجھاتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, یہ دنیا ایسی ہی ہے, کبھی کسی پہ آتی ہے کبھی کسی پہ آتی ہے, اور جب یہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے تو اس پہ جب صبر کرتے ہیں تو بہت زیادہ اجر ملتا ہے, اللہ کا ساتھ بھی ملتا ہے. میرا عجیب سا تعلق ہے ویسے رب سے, مجھے خود نہیں اس کا, بہت میں جھک جاتی ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ میں زمین کے ساتھ لگ جاؤں.
کیا بات ہے,
جتنا مجھے احساس ہے میرے اندر اس رب کا, یہ میں بہت بڑے اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق سمجھا اور اپنا ساتھ مجھے دیا, اپنی پہچان دی ہے. یہ جتنا بھی شکر ادا کروں ہر وقت, اب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے, ہر چیز بہتر چل رہی ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے صبر کیا تھا تو شاید تب مجھے مل گیا, پتا نہیں کیوں میں یہ بھی نہیں کہتی, مجھے نہیں پتا یہ اچھے ہیں الفاظ کہ نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ آزمائش رہے گی, ہو سکتا ہے کل پھر آ جائے, تو میں نے ڈگمگانا نہیں ہے اس صورت میں.
انشاءاللہ انشاءاللہ
کل بھی اس کا ساتھ تھا, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا
انشاءاللہ.
بس میرا ایمان پختہ سے پختہ ہونا چاہیے. اور ایک کوشش میں نے جو زیادہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ میں نے ان لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا ہے جن کا بہت زیادہ مطلب اللہ کو جن کی پہچان بہت زیادہ ہے, ان کے ساتھ میں نے صرف اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دوں جو مجھ سے بھی بہتر ہیں, تاکہ میری منزل ختم نہیں ہو اور میں آگے بڑھتی جاؤں بس اس میں. اور الحمدللہ اس میں کافی کامیاب ہوں, کافی زیادہ الحمدللہ. سوری میں جذباتی ہو گئی تھی تھوڑا سا.
نہیں نہیں بالکل نہیں جی, یہ سبجیکٹ یہ ٹاپک ایسا ہے, اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, یہ جو بات آپ نے ساری کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید استقامت دے اور آگے بڑھائے. یعنی یہ دس از اے جرنی لائف میں, جو میرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ڈیسٹینیز کم ہیں اور پروسیسز زیادہ ہیں, ہم کو ان پروسیسز کو انجوائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو ایک دو چیزیں میں صرف چاہتا ہوں کہ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے آپ نے ایک فرمایا کہ کبھی شکوہ نہیں کیا, एक चीज तो ये भैया बड़ी अच्छी, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, यानी इसमें मैं अनकंडीशनली ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों में, यकीन करें आप, वी आर जनरली ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मिसिंग, व्हाट शुड हैव हैपेंड, और इस चक्कर में हमेशा अपने प्रेजेंट को हम मिस करते रहते हैं। ये जो एस्पेक्ट है ना जी, इसको थोड़ा सा आपने अपने जहन में उलटाना है, यानी ये मसला नहीं है कि शिकवा नहीं किया, मसला ये है कि शिकवा कभी पैदा ही नहीं हुआ। असल में कंस्ट्रक्शन जब चेंज हो जाएगी तो शिकवा पैदा होने का चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो एस्पेक्ट है कि शिकवा, यानी शिकवा हमें किसी चीज के होने पर ना होने पर ऐसा ही होगा ना जी, जिस वक्त आपको ये याद रहेगा कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आ रहा है और जो कुछ नहीं आ रहा, वो सब असल में जिस जात की तरफ, जिस जात के कंट्रोल में है, वो जात मेरा इतना ज्यादा भला चाहती है, इतना ज्यादा भला चाहती है कि मैं क्या शिकवा करूं। और ये कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर शिकवा पैदा हो? शिकवा तो उधर से होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, नहीं मेरे साथ तो असल में वो जात अच्छा करती चली जा रही है। और अगर आपको सबर के अजर में कुछ नहीं मिल रहा है इस तक, क्योंकि आपका अजर आगे है, ठीक है जी। जो एक इस पूरी कंस्ट्रक्शन का एक लाजमी हिस्सा है वो ये है कि ये जिंदगी स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉन्शियस लाइफ, द डे यू बिकेम कॉन्शियस ऑफ एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, उस दिन से शुरू होने के बाद अब आखिरी दिन तक इसमें कोई रिवॉर्ड और कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सारे की सारी आजमाइश है। अगर अच्छा हो रहा है तो ये आपके करने के नतीजे में नहीं अच्छा हो रहा, अगर बुरा हो रहा है तो ये आपके सजा के तौर पर नहीं हो रहा, अलबत्ता उसी की इनायत है ये, उसी की बहुत बड़ी इनायत है ये कि अगर हम कुछ गलती कर जाएं तो वो कई दफा हमें झंझोड़ देता है, हम भूलने का चांस रखते हैं। इट इज अ वेरी गुड चांस कि हम इसको इग्नोर ही ना कर देंगे, खुदा ना खास्ता, इस हवाले से वो हमें झंझोड़ भी देता है कई दफा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी काइंड थिंग फॉर गॉड टू डू, कि हमें वो छोड़ना दे। अच्छा तुमने मुझे याद नहीं रखा है तो चलो, यानी ऐसा नहीं है कि अगर मुझे आज मैंने खुदा को याद नहीं किया तो वो अब अगले ही दिन से मेरे लिए दरवाजे बंद कर देगा बेहतरी के, वो मुझे बार बार प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटीज के, नहीं वापस आ जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, यहाँ तक कि दैट आई प्रूव एंड आई से इट विद माई एक्शंस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मर्सी एनी मोर। अल्लाह ताला इससे बचाए हम सबको, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे अल्फाज जो मुझे कहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सही बात है कि शिकवा पैदा ही नहीं हुआ, और अगर पैदा होता तो शायद मैं करती, लेकिन वाकई सही बात है, ये ज्यादा अच्छे अल्फाज है कि शिकवा पैदा ही नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया
जी। हमजा साहब, आप वालेकुम
सर, कैसे हैं आप?
वालेकुम अल्लाह के शुक्र जी, आप सुनाइए
जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, बस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माय कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, कि जब कोई आजमाइश आती है जिसमें बाकी लोगों ने शेयर किया, मैं भी जब छोटा था क्लास 6 में था, जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए और जिंदगी में बहुत सी स्ट्रगल्स और बहुत चीजें देखी हैं, लेकिन जब भी ऐसा मौका आया तो शायद एक ही चीज जहन में जो गालिब रहती थी वो यही था कि जिंदगी में जब जब से हमने होश संभाला है, और मुझे नहीं पता मैं मतलब कहाँ से आया हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने ही भेजा है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो उसी जात की तरफ से ही हो रहा है। तो मेरा सिर्फ यही बिलीव था कि अगर ये एक आजमाइश का वक्त है, कुछ डिफरेंस होती है, कुछ चीजें आपके साथ सारी जिंदगी रहती हैं, जिस तरह मेरा बेटा है वो ऑटिज्म का है उसको, तो वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट चेंज दैट रियलिटी, वो वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट जो भी उसके साथ है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो वक्ती तौर पे होती हैं, कुछ मिसहैप होते हैं, कुछ चीजें आती हैं, स्ट्रगल होती हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। तो सिर्फ ये है कि हमेशा सोच यही रही है कि जो भी चीज, जो भी आजमाइश आई है वो अल्लाह की तरफ से यही है, और जब वो चीज खत्म हो जाती है तो शुक्र भी होता है उस जात का। लेकिन सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन ये है कि जो चीजें चलती हैं हमारी जिंदगी के साथ थ्रू आउट चलेंगी, उसका थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि उसको हम किस तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो अभी कह लेंगे उस زاویہ نظر سے نہیں دیکھا ابھی. تو دیٹس واٹ آئی ایم لوکنگ فور کہ اگر آپ جب آپ شیئر کریں گے تو میں اس میں سے کیا سبق لے سکتا ہوں.
ضرور ضرور اس وقت بھی دیکھیے اور ویسے بھی دیکھیے. ایک چیز جو ہے جو امپورٹنٹ جو میں نے شروع میں رافعہ کے جواب میں گزارش کی وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اٹ از یور کنسٹرکشن آف ریالٹی وچ از امپورٹنٹ. کیسے دیکھیں گے آپ؟ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ایک چیز ابھی ایک پیراڈاکس ریزالو نہیں ہوا, وہ بھی جب ریزالو ہوگا نا جی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اور ایلیویٹ ہوگی, جو آپ جس کو آپ فیتھ کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں اور ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی ابھی کیا ہوا ہے کہ دیر از ون پیراڈاکس وچ از اسٹل انڈر ریزولوشن. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بٹ اگین دی امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ دیٹ کہ آئی گیو یو اے سولوشن ٹو دس پرابلم. دی امپورٹنٹ تھنگ از یو کنسٹرکٹ اے سولوشن ٹو یور پرابلم. یہ ہے جو امپورٹنٹ بات ہے. میری زندگی میں ہونے والے سوالات کو جب میں ریزالو کروں گا تو اس سے مجھے وہ فیتھ ملے گا. یہ ہے جو میری تھیوری ہے. ٹھیک ہے جی, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. البتہ اف اٹ از آف اینی انکریجنگ ایسپیکٹ اگر اس کے اندر کوئی ہے تو میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ آٹزم کی بھی ویریس صورتیں ہیں جی اور اپرچونیٹیز ہیں. ایک زمانے میں فارچون 500 کی جو کمپنیز تھیں ان کے تقریباً اوور 50% جو سی ایوز ہیں وہ آٹسٹک تھے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ آٹزم اصل میں ایموشن سے ڈسکنیکشن ہے الٹیمیٹلی اگر اس کو دیکھا جائے. اور اگر یہ ایموشن سے ڈسکنیکشن جو ہے, جس طرح سے کئی لوگوں کی آنکھ نہیں کام کرتی, کچھ کے کان نہیں کام کرتے, تو ان کی کچھ دوسری صلاحیتیں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ جو آپ کا بیٹا ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم آپ کو فیل ہوتی ہے, ہماری نظر اصل میں ان پرابلمز پہ رہ جاتی ہے. آپ اگر اس کو اس پہلو سے جائزہ لیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں بہت سٹرونگ ہیں جو اس کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں آئندہ زندگی میں. ہماری ایک اور پرابلم بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھ لیں جسٹ پاسنگ ریفرنس کے طور پر. یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا جی, یہ ہماری صرف دو انٹیلیجنسز کو امپورٹنس دیتا ہے. نمبر ون از لاجیکل انٹیلیجنس اینڈ نمبر ٹو از لینگویج انٹیلیجنس. یہ جو ہماری لنگوسٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے اور ہمارے اندر بہت ساری دوسری انٹیلیجنسز ہیں. یہ جو انٹیلیجنس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کی انٹرپرسنل انٹیلیجنس تھوڑی سی, انٹرپرسنل انٹراپرسنل انٹیلیجنس یہ جو ہے یہ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے, لیکن ان کی بہت ساری دوسری انٹیلیجنسز بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں دے کین اچیو مچ مور دین ادرز ان مینی ادر فیلڈس. ٹھیک ہے جی, انفارچونیٹلی کیونکہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں سب لوگ جو پاکستان میں رہے ہیں کہ ہم شروع سے اپنے بچوں کو انجینئر یا ڈاکٹری بنانا چاہتے ہیں, یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایگزامز میں اچھا کریں, گریڈز اچھے لیں, یہ کریں وہ کریں, یہ یو نو ٹاپ 3% پہ آئیں, یہ سب کچھ کریں. ہم ان کی یونیکنیس اور ان کی انڈیویجویلٹی کو مس کر جاتے ہیں. وہ ہر بچہ جو ہے چاہے وہ جس طرح سے آپ نے فرمایا, یہ بڑی گلیئرنگ ایگزامپل ہیں اس چیز کی کہ جدھر بچے کی یونیکنیس بہت ہی زیادہ واضح ہو گئی ہے. ہم اگر ویسے دیکھیں تو بچہ ہر بچہ ہی یونیک ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے اندر کچھ اپنے پوٹینشیل ہیں. اس پہلو سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا مے بی اس میں کچھ پیراڈاکس کا ریزولوشن مل جائے آپ کو. یعنی اصل چیز جو ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, جس کو ہم اگنور کرتے رہے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی, وہ یہ ہے کہ ہم ان پیراڈاکسز کو اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, یعنی نہ میں نے اس کو اپنے ذہن میں ریزالو کیا ہے, میں صرف یہ سمجھتا ہوں سمپلی کہ بس ٹھیک ہے مجھے تو ماننا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے تو مان لیتا ہوں. نہیں, وہ اندر سے آواز جو ہے وہ جب ریزالو ہوگی تو وہ اسٹرانگ آواز ہوگی اس کی. اس چیز کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے جی انشاءاللہ. اینڈ لیٹ می نو جب بھی کبھی آپ کو ایسا لگے کہ ٹوڈے یو ہیو سکسیسفلی ریزالو دس ایشو, دیٹ ول ایکچولی انہانس اینڈ ایلیویٹ یور فیتھ ایز ویل انشاءاللہ اینڈ میک اٹ مور ریلیونٹ ٹو یور لائف. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جی. جی
جی زین صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی پلیز, تھینک یو ویری مچ. میرا اپنا
پروفائل میں نے واٹس ایپ پہ ہے اور میرا چینل جو ہے دا نیوٹریسٹائل ہے, مجھے ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہوں لیکن نیکسٹ ٹائم میں ڈال دوں گا, اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. شکوہ پہ تھوڑا سا نیوانس میں شیئر کرنا چاہوں گا پلیز. دیکھیے ایک ہے پارٹی, فرسٹ پارٹی اللہ تعالیٰ ہے جو کریٹر ہے, خالق ہے اپنے. سیکنڈ پارٹی میں ہوں, میرا ایک ذاتی تعلق ہے میرے رب سے, رب کائنات سے. تھرڈ پارٹی ہے دا ہول کریشن, ریسٹ آف دا کریشن. اب میں ہوں, اگر میں اپنی تنہائی میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں, میں یہ کسی کریشن کو, یہاں تک کہ میری اہلیہ کو, میرے بچوں کو, میرے والدین کو, میرے کسی اقارب کو بھی پتا نہیں ہے, یہ میرے اور میرے فرسٹ پارٹی رب کو پتا ہے صرف. اور میں اکیلے میں بات کرتا ہوں اور اس سے شکوا کرتا ہوں, ایک وہ شکوا جو شکایت نہیں ہے, جس میں ایک محبت کا پہلو ہے. میں جانتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرتا ہے اور میں تیرا عبد ہوں, میں تیری عبادت کرتا ہوں شکر کی بنیاد پر. اسی شکر کی بنیاد پر میں تجھ سے کچھ شکایت بھی کرتا ہوں کیونکہ تو سننے والا ہے. یہ ایک نیوان صحیح ہے لیکن یہ کسی اور کو پتا نہیں ہے. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
نہیں, ایک تو جی پہلے بھی کسی نے یہ فرمایا کہ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, جی یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اس چیز, اس اپیلیشن کا, آئی ڈونٹ ڈیزرو دس اپیلیشن. میں بس معز امجدی ہوں جی. جو آپ کی بات ہے اس سے مجھے پوری طرح سے اتفاق ہے جی. آئی ہیو ایبسلوٹلی نو آبجیکشن ٹو دیٹ. میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اور اس میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بھی اصل میں اپنے لیے مدد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے.
Exactly.
I have no problem with that. Yeah, I think who am I to have any problem with that? وہ تو آپ دیکھیں نا, وہ جو حضرت یعقوب کے الفاظ ہیں, انما بسی و حزنی اللہ, کہ میں اپنے دل کے اندر جو میری تکلیف ہے اور میرا غم ہے وہ میں اپنے پروردگاری سے بیان کروں گا.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے, جب بہت ہی آپ حزن کی حالت میں تھے تو آخری میں کچھ الفاظ ایسے ہیں آپ کے کہ میری شکایت تجھی سے کرتا ہوں میں, اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ہر تکلیف منظور ہے.
بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی اور اس کا پہلو بھی جو چیز ہمیں پیش نظر ضرور رکھنی چاہیے جی, وہ یہ کہ یعنی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کئی دفعہ, ویئر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, واٹ از دا ریسپانس ریکوائرڈ فرام می. اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس, وہ استخارہ, وہ خود بھی یہ جو تسلیم اور رضا ہے, یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس فیتھ کے کانسیپٹ میں. تسلیم اور رضا دونوں ہی, اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا پیدا کرنے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر تسلیم پیدا ہونا ہمارے اندر کہ یہ ٹھیک ہے, دس از واٹ از ہیپنگ. تھینک یو ویری مچ جی زین صاحب, جزاک اللہ جی.
موئی صاحب, شکوا کرنا ٹھیک ہے, بٹ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, آپ کمپلین نہ کریں. میں فیل کرتی ہوں کہ اگر میرا ایک پرسنل کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے تو میں اللہ سے کمپلین کیوں نہیں کر سکتی. میں دنیا کو نہ کمپلین کروں, بٹ آئی کین کمپلین ٹو گاڈ کہ اللہ وائی ڈڈ دس ہیپن ٹو می. بٹ ادروائز پیپل سے کہ نہیں, یو شوڈ accept it, whatever has happened is for your own betterment. So, isme ya, you mean to say that I shouldn't complain, I should
ye jo abhi Zain sahab ne baat farmayi thi, I totally agree with him. ke ek hai jidhar aapki jo gham ka madawai ke taur par aap khuda se baat cheet kar rahi, wo aapka aur khuda ka mamla hai, isme koi teesra involved nahi. جی, اینڈ نو بڈی کین ایون نو اباؤٹ اٹ. اس میں عام طور پر جس چیز کو بیان بھی کیا جاتا ہے وہ اصل میں اپنی لمٹس کا ادراک ہے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے پروردگار, یہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ تیرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے اس پہ راضی بھی رہنا چاہیے. پروردگار میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے, میری مدد فرما. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے یہ غالب آئے گا اس میں. ٹھیک ہے جی, وہ یہ نہیں آئے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ وائی آر پیپل ناٹ ڈوئنگ دس وتھ می, وائی آر پیپل ناٹ بینگ کائنڈ وتھ می. یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے it is taking me to a place where it is becoming very difficult for me to continue in the right spirit. इसमें मेरी मदद करें, ठीक है जी, ये वाला एस्पेक्ट आज ज्यादा गालिब हो जाएगा.
Okay, that I understand. So it's a direct farmaish to God to help me,
right,
regardless of what people say. This is between me and Allah, what I say.
Exactly. This is between you and God. बिल्कुल. सबर के मौके पर शुक्र अदा किया जा सकता है या नहीं? कहते हैं कि जहां आम मुसलमान के लिए सबर का हुक्म है, वहां अल्लाह ताला का वली शुक्र अदा करता है. क्या ये बात सही है? वजाहत करने. मैं वली को जानता नहीं जी, सीरियसली स्पीकिंग, आई डोंट नो. मेरा ये ख्याल है कि हमारी when we feel suppressed, when we feel in a difficulty, जब भी जिंदगी में वो मौका आ जाए कभी कि आपको ये महसूस हो कि आप की ख्वाहिशात के खिलाफ चल रही है बात, तो इनिशियली जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए वो सब्र है, और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन है कि जो हमको ये याद करा दे कि ये यहाँ पर अल्लाह ताला का हाथ है और ये मेरी बेहतरी के लिए एक चीज पैदा हो रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे अंदर ये हौसला भी देगा, इस सोच के नतीजे में भी हौसला मिलेगा. ये जो बात है कि क्या हम एक मुश्किल आई है तो उस पर शुक्र अदा करें, बेशक करें, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जी, यानी ये कोई दीन का स्टैंडर्ड नहीं है. दीन का स्टैंडर्ड ये है कि मुश्किल आई है तो उसमें स्टेडफास्ट रहें, अपनी परसेवेरेंट रहें, ये चीजें हैं. यानी ऐसा नहीं कि मुश्किल आई तो मैंने कहा चलो फिर दफा करो, इस पे इस रास्ते पर चलने की क्या जरूरत है. नहीं, परसेवेयर ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टू बी राइट. जिंदगी में आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है जी, दिस इज हाउ आई बिलीव थिंग्स आर, उसके ऊपर एकेडमिक इतराज आएगा, जरूर सुने, सब कुछ होगा, ठीक है, बट द थिंग इज कि जब आपने उसको समझ लिया है तो अब जिंदगी के अंदर उसके उतार चढ़ाव में उसको याद रखना है. जब अच्छा हुआ है तो शुक्र करना है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, और हम्बल रखना है अपने आप को, ह्यूमिलिटी कभी नहीं छोड़नी. जब जब कोई मुश्किल पड़ी है तो उस पर परसेवेरेंट रहना है, अपने अपने उस रास्ते को जो आपने अपनी अकल से इख्तियार किया है उसको छोड़ नहीं देना है, इसलिए क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है यार, और छोड़ो परे, ये कोई इट इज नॉट वर्थ इट. जब पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि इट्स मच मोर देन व्हाट इट वाज वर्थ. ये जो मुश्किल है ये तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, जिसको हमें जो इनाम, अगर हम कभी अल्लाह ने चाह, अल्लाह ताला हम सबको हमारी गलतियों को माफ फरमाए, हमें उस जगह तक पहुंचाने में मदद करे, हमारी हमें तौफीक दे, अगर हम पहुंच गए तो यकीन करें आपको कि any cost that you would have borne in this world would seem to be insignificant. Is par gaur o fikr zarur jari rakhiyega ji, that what we have shared in this, because it is this deliberation, ye jo deliberation hai ye aapka apne sath ek dialogue hai. Hamari zindagiyon mein conversations ka role hum isse pehle baat kar chuke hain, hame conversations literally form kar rahi hoti hain. What are we talking about with our own selves, with our people around us, with our environment, with God, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें form कर रही होती हैं, हमारी सोच को, हमारी outlook को, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? और हमजा आपने please इस पर गौर करना है कि ये जो unresolved, जिस तरह राफिया ने भी फरमाया, आपने भी, जो unresolved चीजें हैं इनको किस तरह से आप resolve करेंगे? आप when you see your son in this state, think about it that it is a creation of the all-merciful, all-knowing, omnipotent and wise God who is completely, who is absolutely just. ठीक है जी, तो वो जो है, मैं इतना इतना आपसे अर्ज कर देता हूँ कि क्योंकि जिंदगी आजमाइश की जगह है, इस मामले में जस्टिस को अल्लाह ताला ने डिफर्ड रखा है और इसको बयान भी किया है, तो बाकी जो सारे एट्रीब्यूट हैं वो हर वक्त एक्टिव हैं, इस वक्त भी एक्टिव हैं. जस्टिस के बारे में अल्लाह ताला ने ये क्लियरली बता दिया कि इसको, इस आजमाइश को की जिंदगी को जारी रखने के लिए जरूरी है कि वो जस्टिस को डिले कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये खत्म नहीं की गई है, और इसी के लिए वो अल्लाह ताला ये बताता है कि ये दुनिया की मॉरल कंप्लीशन उसके बगैर नहीं हो सकती कि खुदा की जस्टिस आए. तो आपने इस पर गौर करना है जी, इस पैराडॉक्स को रिजोल्व करना है, ये कोई एक हफ्ते की बात नहीं है, it is an ongoing process in life. कि जब मेरे सामने ये पैराडॉक्सेस आए तो मैं इत्मीनान के साथ ये कह सकूं कि ये किस तरह से मैं इसको देखता हूँ कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला की के ईमान का हिस्सा बनता है मेरी जिंदगी के अंदर हर पहलू जो है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड मैं ये फिर आपसे शेयर करता हूँ। जी जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी।